अभिमन्यु प्रताप संतुष्ट हो गए थे। जैसा कि विशंभर मिश्र ने कहा था कि अखिल प्रताप साधना के क्षेत्र में जाएंगे, और वो अखिल प्रताप का देवी ऊर्जा के प्रति सहज समर्पण देख रहे थे, तो उन्होंने उनके मार्गदर्शन करने के लिए विशंभर मिश्र से ही अनुरोध किया। बाबा सा, हमारी दृष्टि में आपसे अधिक योग्य और अनुभवी कोई नहीं है। अगर अखिल प्रताप को आप स्वयं अपने देखरेख में इस मार्ग पर बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। आपके साथ रहने पर हम भी निश्चित रहेंगे, परंतु आपके कुलगुरु भी तो हैं, वो आपका गुरु घराना है। वो तो आप समझें, आपकी दृष्टि में क्या उचित होगा। वो आपके गुरु भाई भी हैं, आपका अनुरोध नहीं टालेंगे। हमारे कहने से फिर मासा की दृष्टि में भी ये बात चली जाएगी, और हम ये नहीं चाहते जब तक कि सभी चीज़ सही स्थान पर नहीं हो। अभिमन्यु प्रताप ने अपनी मजबूरी बताई। विशंभर मिश्र समझ गए, अभिमन्यु प्रताप सच में ये नहीं चाहते थे कि उनके पुत्रों की शिक्षा दीक्षा और देखभाल में कहीं कोई कमी हो, इसलिए उन्होंने इसे सहज स्वीकार कर लिया। अखिल प्रताप को अपनी नानी के घर छोड़कर ही अभिमन्यु प्रताप वापस राजगढ़ पैलेस के लिए लौट गए थे। इधर अखिल प्रताप की आध्यात्मिक शिक्षा का पहला चरण शुरू हो गया था। विशंभर मिश्र ने खुद जगदेव जी को अपने पास बुलाया और विधिवत अखिल प्रताप को दीक्षा दिलवाई, जिसमें कि गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का जाप था। माँ जगदम्बा की उन पर ऐसी कृपा थी कि बहुत कम समय में ही अखिल प्रताप ने अपना पहला चरण पूरा कर लिया था, और अपने हॉस्टल लौटने से पहले ही विशंभर मिश्र का मार्गदर्शन तथा जगदेव जी की अखिल प्रताप का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया। जगदेव ने अखिल प्रताप को दूसरे चरण के बारे में सारी बातें समझाईं और उन्हें मानसिक जाप करने के लिए कह दिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में भी स्वयं को मजबूत करने लगे। वो वापस अपने हॉस्टल लौट चुके थे। जगदेव जी ने भी विशंभर मिश्र के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अपने तक ही सीमित रखा। द्वितीय चरण पूर्ण होने के बाद तृतीय चरण के लिए वो इन्हें कोलकाता कालीमठ में भेजने वाले थे, और इधर अभिमन्यु प्रताप ने विशंभर मिश्र की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की रूपरेखा तय कर ली थी, जिसमें कि सबसे पहले तो उन्होंने राजगढ़ पैलेस के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। पर अब उनके सोचने के लिए बहुत कुछ बचा था। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। अभिमन्यु प्रताप अपने घर परिवार को देख रहे थे। उन्होंने अपने जीते जी अपनी वसीयत बनाने का सोचा। इसके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति से लेकर बिजनेस लाइन को भी तीन हिस्सों में बांट दिया था, पर यह बराबर 33% का हिसाब नहीं था, 40-40-20 था, जिसमें 40% अखिल प्रताप के पास, 40% विक्रम प्रताप के पास और 20% अपने ना रहने पर सुगंधा जी के नाम लिखा था, और यदि उनकी मृत्यु अभिमन्यु प्रताप से पहले हो जाती है तब दोनों बच्चों में 50-50% भाग दिया जाएगा। सुगंधा जी के हाथ से उन्होंने क्रय विक्रय की शक्ति तथा वसीयत बनाने का अधिकार भी छीन रखा था। बहुत कुछ ऐसे क्लॉज थे, पर उन्होंने घंटे वकील के साथ बैठक करके सब कुछ क्लियर किया था। वो कहीं भी अपने दोनों बेटों में भेदभाव नहीं चाहते थे। ये सब कुछ उन्होंने शत्रुपा देवी की नज़रों से बचकर किया था, और सुगंधा जी को तो इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। समर्थ सिंह और पुलकित सिंह को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कोई था जिसे कि इसकी भनक लग चुकी थी, और ये थे रतनगढ़ रियासत के राणा रतन सिंह, आरती के पापा। रतन सिंह की बहन का विवाह अभिमन्यु प्रताप के साथ होना निश्चित हुआ था। ये वही लड़की थी जिन्हें शत्रुपा देवी ने सबसे पहले अभिमन्यु प्रताप के लिए पसंद किया था, परंतु जब अभिमन्यु प्रताप ने स्वयं अपूर्वा देवी के साथ विवाह कर लिया तो ये संबंध बनने से पहले ही टूट गया। इस संबंध के टूटने पर रतन सिंह को बहुत ठेस लगी थी, क्योंकि इस विवाह को वो अपने स्टेटस के साथ साथ व्यापारिक संबंध के रूप में भी देख रहे थे। राजगढ़ रियासत के साथ विवाह होने पर उन्हें सहज भाव से अपने भी बिजनेस के विस्तार का उचित अवसर मिलता, क्योंकि अभिमन्यु प्रताप की कर्तव्यशीलता और उनके कार्य करने की क्षमता से पूरा मेवाड़ अचंभित था। इस विवाह संबंध के केवल कथित रजामंदी होने के बाद ही रतन सिंह का सीना चौड़ा हो गया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। आसमान में बैठते बैठते रतन से नीचे गिर चुके थे, परंतु अभी उनकी ये स्थिति नहीं थी कि वो इस विषय में कुछ बोल सकें। इसलिए उन्होंने जब शत्रुपा देवी ने उनसे क्षमा याचना की थी, रतन सिंह ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है, सबसे पहले तो बच्चों की खुशी है। रतन सिंह ने बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब अपूर्वा देवी का देहांत हो गया तो शत्रुपा देवी ने रतन सिंह के घर पर इस विवाह के लिए फिर प्रस्ताव भेजा था, पर तब तक रतन सिंह अपनी बहन का विवाह कहीं और कर चुके थे। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी, कथित रूप से ही सही, लेकिन ये संबंध तय हो चुका था, तो फिर उन्हें अपनी बहन के लिए मेवाड़ में कोई दूसरा वर नहीं मिला। दूसरे में वो अभिमन्यु प्रताप के टक्कर का ही ढूंढ रहे थे, जो कि फिलहाल में पूरे मेवाड़ में कहीं भी उपस्थित नहीं था। उन्होंने अपनी बहन की शादी दूर पहाड़ों पर कर दी थी। अब जब शत्रुपा देवी ने पुनः उनके दरवाजे पर इस संबंध के लिए कहा, तब भी रतन सिंह इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी दूसरी छोटी बहन को अभिमन्यु प्रताप से विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत ही इनकार कर दिया। वो एक बच्चे के पिता के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। दूसरे में अभिमन्यु प्रताप और उनकी उम्र में भी अच्छा खासा अंतर था। रतन सिंह इस चीज के लिए बहुत क्रोधित हुए, पर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके कुछ करने से पहले ही उनकी बहन ने अपनी बड़ी बहन के देवर के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। इस तरह से वो भी दूर पहाड़ों पर चली जा चुकी थी। तब उन्होंने अपनी दूर के रिश्ते की बहन को ढूंढकर शत्रुपा देवी के सामने कर दिया, और इस तरह से सुगंधा देवी अभिमन्यु प्रताप के जीवन में आई थी। इतना बताते बताते मालिनी चुप हो गई। इसके आगे की कहानी अखिल प्रताप को खुद बताती। हर हर महादेव।